ये हफ्ता वार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 26 सितंबर 2021 बरोज इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून हकीकत सुनहरी मतन यूहन्ना। क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। मसीह यीशु। जवाबी मतालिया सलातीन रोमियो सफनिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मैं घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या दुआ करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी तो उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द एक पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में ज़ाहिर है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं। खुदावंद इसराइल का बादशाह तेरे अंदर है, तू फिर मुसीबत को न देखेगी। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आयन सिखा, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। यसाया। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नमाया होगा, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तुलू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंख उठाकर चारों तरफ देख, फिर तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम निजात और अपने फाटकों का हमद रखेगी। फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी ना चाँद के चमकने से, बल्कि खुदावन तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि तेरा खुदावन तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। करंथियों। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें यह खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीजें अवधि हैं। यूहन्ना। बस वो फिर कानाई गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था और बादशाह का एक मुलाज़म था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देख लो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजम ने उससे कहा, ऐ खुदावन मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने उससे कहा कि कल सातवें घंटे में उसकी ताप उतर गई। बस बाप जान गया कि ये वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। यूहन्ना। सुबह सवेरे ही वो फिर हकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यूहन्ना। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रबी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। करंथियों। तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आईं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दीं। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, बल्कि हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। खुलसियों। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई हैं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और उसने अब तुम्हारा भी, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, मेल कर लिया, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकदसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। अब मैं मेरी वीके रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हमाहंग और अब्दि है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। आसमान पर जाने का वाहद रास्ता हमाहंगी है, اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ جس کے پاس نیکی کا حقیقی تصور ہے وہ بدی کا سارا فہم کھو دیتا ہے، اور اس وجہ سے روح کے نہ مرنے والے حقائق میں رہنمائی پاتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں قائم ہوتا ہے، ایسی زندگی جو زندگی کو سہارا نہ دینے کے قابل بدن سے نہیں بلکہ اس سچائی سے حاصل کی گئی ہو جو خود کے لافانی خیال کو آشکار کرتی ہے۔ یسوع نے ہستی کا حقیقی تصور پیش کیا جس کا نتیجہ انسانوں کے لیے لامحدود برکات کی صورت نکلا۔ جب بشر خدا اور انسان سے متعلق درست خیالات رکھتے ہیں، تخلیق کے مقاصد کی کثرت جو اس سے قبل نادیدنی تھی اب دیدنی ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی روح ہے، نہ کبھی مادے کا اور نہ کبھی مادے میں، یہ ادراک خدا میں سب کچھ اچھا پاتے ہوئے اور کسی دوسرے شعور کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے خود کاملیت کی طرف وسیع ہوگا۔ بیماری، گناہ اور موت انسانی نتائج کے مبہم حقیقتیں ہیں۔ زندگی، سچائی اور محبت الہی سائنس کی حقیقتیں ہیں۔ ان کا آغاز ایمان میں ہوتا ہے اور روحانی سمجھ میں مکمل مدار کے ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ جیسے بادل سورج کو چھپا لیتا ہے مگر اسے بجھا نہیں سکتا، ویسے ہی جھوٹا عقیدہ عارضی طور پر ناقابل تغیر ہم آہنگی کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے، مگر جھوٹا عقیدہ ایمان، امید اور پھلوں سے مسلح سائنس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ جس کی اصطلاح مادی فہم ہے وہ چیزوں کی صرف فانی عارضی فہم کی رپورٹ کر سکتا ہے، جبکہ روحانی فہم صرف سچائی کی گواہی دے سکتا ہے۔ مادی فہم کے لیے غیر حقیقی تب تک حقیقی رہتا ہے جب تک کہ کرسچن سائنس کی بدولت اس فہم کی تصحیح نہیں ہو جاتی۔ مادی فہم کی مخالفت کرتے ہوئے روحانی فہم میں الہام، امید، ایمان، سمجھ، سود مندی، حقیقت شامل ہوتے ہیں۔ حقیقت روحانی، ہم آہنگ، ناقابل تبدیل، لافانی، الہی، ابدی ہے۔ ہستی کے حقائق اس کے عمومی کام اور سب چیزوں کی ابتدا مادی فہم کے لیے اندیکھے ہیں، جبکہ مادی فہم کی غیر حقیقی اور تقلیدی حرکات جو لافانی ضابطہ کار اور عمل کو الٹ کر دیں حقیقی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جو کوئی اس حقیقت کی، اس مادی فرضی عقل کی مخالفت کرتا ہے اسے فریبی کہا جاتا یا فریب کھانے والا کہا جاتا ہے۔ اگر استاد نے ایک طالب علم کو لے کر اسے خدا سے متعلق پوشیدہ حقائق کی تعلیم نہ دی ہوتی تو وہ ہرگز مسلوب نہ ہوتا۔ مادے کی گرفت میں روح کو جکڑ کے رکھنے کا عزم سچائی اور محبت کو اذیت دینے والا ہے۔ مادی فہم روح خدا کو سمجھنے میں بشر کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ صرف روحانی فہم کے وسیلہ انسان خدائی کو سمجھتا اور اس سے محبت کرتا ہے۔ عقل کی سائنس سے متعلق مادی حواس کے بے شمار تضادات اس اندیکھی سچائی کو تبدیل نہیں کرتے جو ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہے۔ بصیرت، سماعت، تمام تر روحانی احساسات ابدی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کی حقیقت اور لافانیت روح اور تفہیم میں ہے، نہ کہ مادے میں، اسی طرح ان کا استحکام بھی۔ پوروس کہتا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، رومیو 1:20۔ کرسچن سائنس میں جب روح کا جوہر ظاہر ہوتا ہے تو مادے کے عدم کی شناخت ہوتی ہے۔ جہاں خدا کا روح ہے اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں ہے، بدی عدم بن جاتی ہے، یعنی روح کا متضاد۔ اگر روحانی عکاسی نہیں ہے تو خلا کی تاریکی باقی رہ جاتی ہے اور آسمانی رنگوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ مکاشفہ 21:1 میں ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ انکشاف کرنے والا ہماری وجودیت کی جگہ پر تھا، जबकि वो देखते हुए जो आंख नहीं देख सकती वो गैर इल्हामी सोच के लिए गैर हाजिर है। मुकद्दस तहरीर की ये गवाही साइंस की इस हकीकत को कायम रखती है कि आसमान और ज़मीन एक इंसानी शऊर यानी वो शऊर जो खुदा अता करता है उसके लिए रूहानी है, जबकि दूसरे शऊर गैर रोशन इंसानी अक़ल के लिए बसीरत मादी है। बिलाशुबा ये जाहिर करता है कि जिसे इंसानी अक़ल मादे और रूह की इस्तलाह देती है वो शऊर के मराहिल और हालतों की तरफ इशारा करता है। इस साइंसी शऊर के हमरा एक और मुकाशफा था, हत्ता कि आसमान की तरफ से ऐलान आला हमहंगी के खुदा हमहंगी का इलाही असूल हमेशा इंसान के साथ है और वो उसके लोग हैं। बस इंसान को मजीद काबिल रहम गुनाहगार के तौर पर नहीं समझा गया बल्कि खुदा का बाबरकत फर्जंद समझा गया, क्योंकि आसमान और ज़मीन से मुतल्लिक मुकद्दस यूहन्ना की जिस्मानी हिस गायब हो चुकी थी और इस झूठी हिस की जगह रूहानी हिस आ गई थी, जो ऐसी नफसी हालत थी जिसके वसीला वो नए आसमान और नए ज़मीन को देख सकता था जिसमें रूहानी ख्याल और हकीकत का शऊर शामिल है। ये कलाम का इख्तियार यह नतीजा अक्स करने के लिए था कि हस्ती की ऐसी शनाख्त इस वजूदियत की मौजूदा हालत में इंसान के लिए मुमकिन है और रही थी कि हम मौत दुख और दर्द के आराम से यहाँ और अभी बाखबर हो सकते हैं। ये कतई क्रिश्चियन साइंस की चाशनी है। बर्दाश्त करने वाले अजीज़ों हौसला करें, क्योंकि हस्ती की यह हकीकत यकीनन कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में सामने आएगी। कोई दर्द नहीं होगा और सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आइए हकीकी और अब्दी से मुतल्लिक सीखें और रूह की सल्तनत आसमान की बादशाही आलमगीर हमहंगी की बादशाही और हुक्मरानी के लिए तैयारी करें जो कभी खो नहीं सकती और ना हमेशा के लिए अनदेखी रह सकती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ते जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे सारा जलाल ज़मीन और आसमान और इंसान के लिए। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीह साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकिन को सब गुनाहों से गलत किस्म की पेशन गोइयों मुनसफियों मुजम्मतों इसलाहों गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।